ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। गुड इवनिंग। तो अभी का जो हमारा ये सत्र है, जो ये रनिंग सत्र रहेगा एंड विजनिंग फॉर ए बेटर टुमारो, और जिसके टॉपिक्स में जो इंटरैक्टिव ये सेशंस है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू राइट कर्मा। तो अभी हम इस सत्र की ओर आगे बढ़ने से पहले, हमारे बीच में जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स एंड जो हमारे इस आज के सत्र के मेन चेयरमैन हैं, उन्हें हम डायस पर आमंत्रण करना चाहेंगे। सबसे पहले हम मिस्टर मुकेश तिवारी जी, आप चीफ जीएम, आप प्लीज मंच पर, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। बीके डॉक्टर वसुधा बहन जी, आपको भी मैं आमंत्रण कर रही हूं, डायस पर आकर आप अपना स्थान ग्रहण करें। बीके भरत भूषण भाई जी, आप अभी 5-7 मिनट के अंदर ही हमारे बीच में उपस्थित होंगे। तो जब तक हमारे स्पीकर भरत भूषण भाई जी पहुंचते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी 4:30 हो चुका है, तो ये सेशन हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आज का टॉपिक है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू राइट कर्मा, और हम सभी को ये पता है राइट कर्मा के लिए हम सभी के अंदर, अगर हमारे मन बुद्धि अगर राइट डायरेक्शंस पर रहती है, तो ओबियसली हमारे द्वारा राइट कर्मा होना पॉसिबल है। और राइट कर्मा के लिए आइए थोड़े समय के लिए हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। अपने उस पिता परम पिता परमात्मा की ध्यान में बैठेंगे और आज के सत्र का हम सभी फिर लाभ लेंगे। 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। कितना अच्छा गीत था, सब में हो सहयोग की भावना, और जो ये गीत आज के हमारे सत्र के साथ बिल्कुल ही मैच है, क्योंकि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू राइट कर्मा, तो ये भी हमारे सहयोग का ही एक पाठ है। तो इसके विषय में आगे के लिए हम अपने स्पीकर से सुनेंगे अवश्य। तो अभी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आमंत्रित करते हैं अपनी बहनों को आकर के डायस पर, हमारे सम्मानीय जो गेस्ट है और स्पीकर्स हैं, उन्हों को बैज और गुलदस्ते से आप सम्मान करेंगे, और साथ साथ आप भी अपने कर्तव्यवनी से अपने अंदर के जो सहयोग की भावना को प्रकट करेंगे। हमारे आदरणीय मुकेश तिवारी जी को बैच पहनाते हुए, तो अभी सर्वप्रथम आज के इस सेशन के जो मेन टॉपिक है, उसके लिए कीनोट स्पीच के लिए हम बीके डॉक्टर वसुधा बहन जी से आग्रह करते हैं कि वसुधा बहन जी इस टॉपिक के ऊपर अपना प्रकाश डालेंगे। हमारी आदरणीय वसुधा बहन जी, जो पिछले 44 इयर्स से आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, आप पीएचडी की हुई हैं गुजरात यूनिवर्सिटी से, और कई सालों से आप इस संस्था के जो शिव मनी होम है उसमें भी आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी, इस आध्यात्मिक मार्ग में आपकी विशेष रुचि रहने के कारण आपने यहाँ संस्था के साथ और इस संस्था के अंदर कई ऐसे क्लासेस सेशंस को आपने कंडक्ट कर बहुतों को अपने विचारों के द्वारा आपने लाभान्वित प्रदान किया है। तो आइए अभी हम सभी सुनेंगे आज के मेन टॉपिक के ऊपर हमारी आदरणीय वीके वसुंधरा बहन जी से।
ओम शांति। टॉपिक देख के ही एक प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आती है, क्यों? क्योंकि हम उस देश के रहने वाले हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है। इतनी प्रॉस्पेरिटी का गायन है भारत देश का कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लोगों के घरों में सोना होने की बात तो जाने दो, सोने के महल, उसमें भी भारत देश ही तो था जहां सतयुग और त्रेतायुग का वर्णन है। पूरे विश्व में और कहीं यह बात नहीं है। और यही देश के लिए, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। देखो हर जगह सोना और हीरा स्थूल चीजों का नाम नहीं है। व्हाट इट शोज द प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी इतनी संपन्नता आर्थिक रूप से कि जिसका कोई मिसाल नहीं है पूरे वर्ल्ड में। और अब तो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं है, साइंस में भी भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि क्या कर रहा है, चंद्र के दक्षिण भाग में जाके सोच रहा है कि क्या भारत के लोगों को वहां शिफ्ट किया जाए, वहां रहने का सोच रहा है, वहां सस्ती बहुत है जमीन। देखो ये प्लान है, क्या बढ़िया। और किसी ने, मतलब दो देश ऐसे हैं, अमेरिका और चीन, और अगर भारत इसमें सफल रहा तो भारत भी इतना आगे बढ़ सकेगा। और किस्मत की बात तो ये है कि भारत ही ऐसा देश है जिसने लक्ष्य लिया है कि विश्व गुरु बनना। हम में से कौन कौन ऐसे हैं जो भारत का ये जो मोटो है उसमें अपना योग सहयोग देने को तैयार है? वाह, इतने सारे हाथ तो ऊंचे हो रहे। देखो आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता हमारे जीवन का एक आदर्य है, एक आदर है, एक औदार है और एक रास रुचि रहने करनी है। लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाना पूरे देश के साथ कोई कम बात नहीं है। एक एक व्यक्ति जब ऐसा सोचेगा तो भारत फिर कहां पीछे रहेगा, जगत गुरु तो बन के ही रहेगा। लेकिन ये जो प्रॉस्पेरिटी की बात है उसका बेस क्या है? प्योरिटी एंड पीस। बहुत जरूरी है शांति हो और पवित्रता हो, तभी सुख संपन्नता इतनी होती है। नहीं तो घर के मटके का पानी भी सूख जाता है अगर शांति नहीं होती। गुजरात का एक बहुत बड़ा पार्ट जिसको सौराष्ट्र कहते हैं, जहां से अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी है, पोरबंदर, वो जगह जो है वहां एक कहावत बहुत फेमस है। वो कहावत पहले मैं गुजराती में कहती हूं। कहावत है गरथ गाठे विद्या पाठे अने हाथे ही साथे। देखो मतलब इतना है कि पहले के जमाने में लोगों के पास सोना द्रव्य ये सब बहुत रहता था, जिसको गरथ कहते हैं। वो जो संपत्ति रहती थी उसको क्या करते थे, पहले का लिबास ही ऐसा होता था कि ये धोती की गांठ में बांध लिया, या माताओं ने क्या किया, साड़ी के पल्लू के गांठ में बांध लिया। तो गरथ गाठे, अभी अभी ये पॉकेट वॉकेट, ये जीन्स इतने इतने सारे पैरों में भी ऐसे ऐसे पॉकेट्स होते, पहले ऐसे नहीं होते थे, वो गांठ में बांध लिया और चल दिए। तो गरथ गाठे मतलब जो भी द्रव्य आपके पास संपत्ति के रूप में है उसको, सोना चांदी जो भी, उसको गांठ में बांध लेते थे। विद्या पाठे मतलब आप जिस बात का मनन चिंतन करते हैं, जैसे आपके गुरुजी ने कोई मंत्र दिया है तो वो पठन करते रहते हैं ना, पठन करते रहते हैं। कई लोगों को जैसे कि गायत्री मंत्र का बहुत कहा होता है कि भाई दिन में 1008 बार आप गायत्री मंत्र का पठन करो, मतलब अंदर कई लोग माला फेरते रहते हैं। बाबा ने हमें क्या सिखाया है, यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य ही क्या है कि हमें परमपिता परमात्मा ने, जिसको हम शिव पिता कहते हैं, वो अवतरित होके हमें सही समझ दे रहे हैं कि आपको ये पठन जो करना है वो ऐसा पाठ पढ़ना है कि खुद वह बन जाओ। हमारे जीवन में ऐसा पठन होना चाहिए। अब पठन मतलब ऐसे बात तो बाबा ने हमें परमात्मा ने यही समझाई ना कि खुद को आत्मा समझकर मन बुद्धि से मुझे याद करो, अपनी कर्मेंद्रियों को जीतो, अपनी मनेंद्रिय मतलब मन चित्त पटल मनस हृदय की धड़कन, ये जो है चेतना, इसको हमें जीतना है। तो ये हमारी मनेंद्रिय जीतना होता है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हमें हमारे जो कर्म की थियरी थी, हाथे ते साथे, मतलब क्या हाथ से क्या होता है, कहावत में कहा ना गलत गांठे विद्या पाठे, अरे हाथे ते साथे मतलब हाथ से हमारे कर्म होते हैं। अब कर्म में अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, इट्स अ रिलेटिव टर्म। बीइंग ए मैथमेटिशियन हम लोग रिलेटिविटी थियरी पढ़ते हैं। रिलेटिविटी थियरी में क्या सीखता है, कई लोगों के लिए कोई कर्म जो है वो राइट कर्म है और कई लोगों के लिए वो रॉन्ग कर्म है। लेकिन ये जो ओवरऑल समाज जिसको स्वीकार करता है, हम ये पूर्व धारणा लेके चलते हैं, आई जस्ट एक्सप्लेन मैथमेटिकली कि हम ये पूर्व धारणा लेके चलते हैं कि जो कर्म समाज में सबको स्वीकार्य है वो अच्छे कर्म है। मारझोड़ करना क्या अच्छे कर्म है, जेल जाना क्या अच्छे कर्म है, औरों को लूट कर धन अमीर लोगों को लूट कर गरीबों में दान करना क्या अच्छे कर्म है। लेकिन जो ये करता है उनको इंडिविजुअली पूछे अगर हम, तो उनके लिए ये अच्छे कर्म है। वो अपने हाथ से ये कर्म करके ये प्रसिद्धि लेना चाहते हैं कि ये जो संपन्नता है ये हमारे कर्म द्वारा आई। लेकिन ये जो रिलेटिव टर्म है उसका हमें परमपिता परमात्मा ने सही अर्थ ये समझाया है। अब मैं इसलिए ये दोहरा रही हूं कि अगर आप ज्ञान में पुराने हैं तो कोई नई बात है ही नहीं, लेकिन अगर नए नए ज्ञान है तो शिव पिता परमात्मा ने हमें क्या कहा है कर्म की थियरी के बारे में, कि आप अगर आत्माभिमानी अवस्था में यानी कि खुद को आत्मा समझो, इतना ही नहीं सामने जो भी है उसको भी आत्मा समझो और वही आत्मिक कॉन्शियस में रहो, तो ये आत्माभिमानी अवस्था बनती है। और वो आत्माभिमानी अवस्था में रह के हम जो भी कर्म करते हैं वो क्या हो जाते हैं, अकर्म। अकर्म मतलब उसको हमें ऐसे समझना है कि जिसका हिसाब किताब नहीं चलता। हिसाब किताब मतलब किसी को दुख दिया किसी को सुख दिया, तो जिसको सुख दिया वो हमसे हमें भी सुख देगा, जिसको दुख दिया वो हमें भी दुख देगा, इसे लेन देन हिसाब किताब कहते हैं। लेकिन हम जब आत्माभिमानी अवस्था में रह के सत्युग त्रेता युग में कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब नहीं बनता, तो वो कर्म अकर्म है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप लोग अगर परमात्मा का परिचय ऑलरेडी ले चुके हैं तो आपको ये भी पता होगा कि परमपिता परमात्मा ने ही हमें ये कर्म की थियरी समझा के कहा कि आप अगर देह भान में रह के कोई भी कर्म करते हो तो वो विकर्म बनता है। अब विकर्म का मतलब ये नहीं कि वो पाप कर्म है, विकर्म का मतलब ये है कि देह भान में रह के मैंने किया ये। रावण को किसने मारा, कौशल्या माता ने राम जी को पूछा कि रावण को किसने मारा, मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। अब माता जी कंफ्यूज हो गई कि अभी कह रहे हो कि मैंने नहीं मारा और दूसरी ही वाक्य में बोल रहे हो कि रावण को मैंने मारा, तो कि मैं सच तो कह रहा हूं। दरअसल बात क्या है, कौशल्या माता की पूछी कि बात क्या है ये आप दोनों वाक्य एक साथ कह रहे हो, तो उनका कहना था कि रावण को मैंने नहीं मारा लेकिन उसके अंदर जो मैं था उसने उसको मारा, तो मैंने मारा। मतलब ईगो जो होता है, ये जो विकार होता है वो चाहे है, लेकिन ये जो सब है वो विकर्म बनते हैं, वो पाप कर्म नहीं कहलाता ना ही वो पुण्य कर्म कहता। आज देखो मेरे पास कहीं से पैसे इकट्ठे करके मैं मंदिर बनाने का प्लान करती हूँ और मंदिर बनवाती भी हूँ। कई लोग मैंने ऐसे मिलती हूँ तो कहते हैं कि हम लोग तो बहुत बड़ा जैन देरासर बनवा रहे हैं या यहाँ वहाँ मंदिर बना रहे हैं। देखो मंदिर बनाना पुण्य का काम है, लेकिन जब पूछो तो क्या कहेंगे, मैंने मंदिर बनवाया। तो ये उसका पुण्य कर्म तो है लेकिन विकर्म है। पुण्य कर्म तो हुआ लेकिन वो विकर्म हुआ, क्योंकि क्या हो रहा था, मैंने बनवाया। हो गई ना बात खत्म। तो ये बहुत छोटी कर्म की थियरी है, लेकिन हमें समझना है कि पाप कर्म, किसी को खून करना, किसी के लिए चोरी करना, झूठ बोलना, ये वगैरह सब जानते हैं कि ये पाप कर्म है, क्योंकि ये समाज को स्वीकार्य नहीं, तो ये पाप कर्म है। तो ये तो विकर्म है ही, लेकिन पुण्य कर्म भी जब मैं लगा के करते हैं ज्यादा तो वो विकर्म बन जाता है। तो ये कर्म की जब हम गुह्य थियरी समझ लेते हैं तो हमें देखना है कि हमें ऐसे कौन से कर्म करने हैं, क्योंकि साथ क्या आना है, कुछ धन संपत्ति कुछ साथ नहीं आना है। जो भी हमने पठन करके अपने विद्या का मनन चिंतन करके आत्मा में, हम आत्मा यहाँ बसती है ना, ये भ्रुकुटी के बीच में रहने का घर है, यहाँ 5.4 mm अंदर में छोटी सी कुटी जिसे कुटिया कहते हैं, वहां आत्मा रहती है जो कि ज्योति बिंदु स्वरूप। ये आत्मा जब अपने पूरे कर्म करती है इस शरीर द्वारा, मतलब कर्म करने के लिए उसे हाथ चाहिए, तो वो हाथ से जो कर्म करती है वही उसके साथ चलते हैं। इसलिए ये कर्म की थ्योरी हम डिटेल में समझ ले, झूठ बोलेंगे तो हमारा पाप कर्म बनेगा, चोरी करेंगे तो पाप कर्म बनेगा, तो ये सब हमारे साथ चलने हैं, क्योंकि संस्कार के रूप में वो हम आत्मा में स्टोर हो जाते हैं। अगर हम आत्मा में संस्कार के रूप में वो अगर कर्म स्टोर हो जाते हैं तो फिर क्या हुआ, हमें कर्म कैसे करने हैं। परमात्मा ने आके हमें समझाया कि अगर मुझ परमपिता परमात्मा की स्मृति में रह के तुम निमित्त भाव से कर्म करोगे, देखो डबल अंडरलाइन, निमित्त भाव से अगर हम कर्म करते हैं तो उससे कुछ न कुछ निर्माण होता है, मतलब यू ऑलवेज वर्क कंस्ट्रक्टिवली। ये जो कंस्ट्रक्टिवली वर्क होगा वो समाज में परिवर्तन लाएगा, अपने हाथों से किए हुए कर्म समाज में परिवर्तन जरूर लाते हैं जब वो हम उसको परमात्मा की स्मृति में करेंगे तो वो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। तो ये जो श्रेष्ठ कर्म है उसका भाथा हमारे भाग्य के लिए जमा होता है। अब भाथा जमा होना मतलब इट इज काइंड ऑफ बैंक बैलेंस, इंक्रीजिंग योर बैंक बैलेंस। हम अगर अपने हाथों से जो कर्म करते हैं वो सत्य कर्म है, वो श्रेष्ठ कर्म है। मैंने फिर से दोहरा रही, श्रेष्ठ कर्म मतलब खुद को आत्मा समझकर परमात्मा की स्मृति में कर्म करना, वो श्रेष्ठ कर्म। अगर कोई भी कर्म हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, देखिए कर्म श्रेष्ठ है, परमात्मा की स्मृति है, तो विस्मृति का सवाल नहीं है, विकर्म का सवाल नहीं है, अकर्म का भी सवाल नहीं है, क्योंकि हमारा भाग्य परमात्मा की स्मृति में किए हुए कर्म का जमा होता है। एक जन्म के लिए नहीं, दो जन्म के लिए नहीं, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 21 जन्म के लिए जमा होता है। अब ये मैथमेटिकली मुझे अभी कोई ना पूछे कि 21 जन्म क्यों और कैसे, वो आपको अभी आगे कोर्स में समझाया जाएगा, तो आपको ध्यान रहेगा कि हमारे एक एक श्रेष्ठ कर्म 21 जन्म के लिए हमें भाग्य देने के लिए फलीभूत होते हैं। तो कितना श्रेष्ठ हमारा भाग्य है कि एक तो हमें परमात्मा की पहचान मिली, दूसरा हमें कर्म की पहचान मिली, और वही विद्या पठन करनी है कि हम आत्मा परमात्मा की स्मृति में निमित्त समझकर अपने सब कर्म करें। हमारे कर्म अगर हम परमात्मा की स्मृति में करते हैं तो उसका भाग्य हम पूरे 21 जन्म के लिए लेने के लिए तैयार रहे। भाग्य लेने के लिए नहीं, लेकिन एक संस्कार बना ले सत्कर्म का, बस सत्कर्म ही करना है यही सोच। और ये क्या है, हमारी सोच बदलता है। हमारी सोच अगर बदली, आज सुबह भारत भूषण भाई भी कह रहे थे ना कि किनारे नहीं बदलो, हमें कश्तियां नहीं बदलनी है, हमें नजरिया बदलना है। नजर तो वही है, कभी चश्मा लगा के देखो तो भी ठीक से नहीं देखा, मुझे तो पीछे कोई दिख नहीं रहा। नजर नहीं बदलनी है, हमारी आउटलुक, हमारा जो नजरिया है हर चीज को देखने का। कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, अच्छे हो एवरीबॉडी वुड वेलकम, बुरे हो तो भी हमें वेलकम क्यों करने हैं, क्योंकि आज की सिचुएशन जो हमारे पास, जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी परिस्थिति आई है, वो क्यों आई है, कैसी भी कड़ी हो, लेकिन वो हमें बेहतरीन बनाने आई है। हमारी परिकल्पना क्या है, बेहतर दुनिया लानी है। पूरी दुनिया परिकल्पना हमारी ये है कि पूरी दुनिया को बेहतरीन बनाना है। तो बेहतरीन कब बना सकेंगे, जब हमारी सोच बेहतर होगी। अब देखो, आप कोई भी कितने भी योग कर लो, कहीं भी जाओ, प्राणायाम करो, ये रामदेव के करो, इसके करो, उससे करो, कोई भी सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, आपको वहां कहीं किसी ने ये समझाया कि अपनी सोच बदलो? परमात्मा ने आके पहला काम यही किया कि अपनी सोच बदलो। सोच क्या बदलनी है, आज सुबह ही कोई कह रहा था, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। अगर हम बदलेंगे तो विश्व क्या है, वी प्लस स्व, हमारा विशिष्ट स्वरूप दुनिया में देखो, हमारा विशिष्ट, चलो मेरा तो लौकिक नाम ही वसुधा है, तो मैं तो पूरी पृथ्वी को ही देखती हूँ। वसुधा मतलब पृथ्वी, होल अर्थ प्लेनेट। तो पूरी पृथ्वी को जब हम देखते हैं तो हमें देखना है कि एक 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 आत्मा कौन है, वसुधैव कुटुंबकम। कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल जीवन लाइफ है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा की एक एक आत्मा जो है वो हम भाई है, परमात्मा की संतान है, हम एक परिवार है, कुटुंब है। कितनी बढ़िया खुशी की बात है कि जब हम देखो, घर में भी कुछ कुटुंब में लौकिक में कुछ कोई बीमार बीमार हो जाए या कोई ऐसी परिस्थिति आए तो सब एक दूसरे को साथ देते, तो ये तो पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व ही हमारा एक साथ है, तो एक दूसरे को साथ देंगे ही। और जब साथ देंगे तो सबका हम विश्वास भी प्राप्त करेंगे, सबके साथ साथ चलेंगे तो विकास भी होगा। यही तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उनका क्या है, भारत को विश्व गुरु बनाने का जो मोटो है उसमें क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पूरा देश का विकास, डेवलपमेंट कैसे होगा, एक दूसरे पे विश्वास रख के, है ना। भले ही वो दैहिक भाव से करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय भावना तो है, एक जागरूकता तो है ना, एक लहर तो है ना। कैसी लहर है कि एक आत्मीयता, सब में विश्वास लाना, तब जाके पूरे देश का विकास होगा। और देश का विकास होगा तो भारत जगत गुरु बनी ही जाएगा। और ये विकास करने के लिए प्रॉस्पेरिटी तो है इतनी, लेकिन हमारे सत्कर्म जो है वो हमें बढ़ाते रहने हैं। बढ़ाते रहने के लिए मेन क्या समझना है, हम आत्मा के मुख्य जो सात गुण है, कौन कौन से सात गुण है, आज तो आपने वो समझ लिए ना। मेन तो क्या है, फोन ऑफ करो, मेन है पवित्रता, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये जो सात आत्मा के गुण है, सुख भी है, आनंद भी है। वैसे स्थूल भाषा की मतलब में तो कोई कहते कि क्या बात है, सुख है तो आनंद है, लेकिन डिस्टिंक्ट है ये सब। ये जो थियरी है पूरी, हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी ने बहुत अच्छी तरह से डेवलप की है। उन्होंने ये शरीर के साथ मुख्य इंद्री, मुख्य बॉडी सिस्टम्स है, साथ एक नॉलेज के लिए, तो उसमें आत्मा का गुण यहाँ ब्रेन के लिए ज्ञान दे दिया। फिर यहाँ पवित्रता, क्योंकि हमारी पांच कर्मेंद्रियां जो है वो चेहरे पे है, तो क्या है, आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, नाक से सांस ले रहे हैं। ये जो पांचों कर्मेंद्रियां चेहरे पे है वो हमें बदलनी है हमारी सोच, क्योंकि उसमें हमें पवित्रता डालनी है। तो आत्मी आत्मा भाई भाई का भाव कब आएगा, जब हम हमारी दृष्टि में चेंज लाएंगे, वृत्ति बदलेंगे। वृत्ति बदलेंगी तो पूरा विश्व बदलेगा। वृत्ति विचार बदलने हैं तो विश्व बदलेगा। पवित्रता आई, फिर हमारे बोल जो है, कभी तो कोई ऐसे बोल बोलते हैं कि किसी की हड्डियां टूट जाए, जबान जो है उसमें एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन वो हड्डियां तुड़वा सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे मुख से ऐसी कोई बात ना हो, तो ये शांति का गुण देता है। फिर आता है यहाँ हार्ट, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हार्ट क्या है, प्रेम का सिंबल है, प्रेम का प्रतीक रूप में कोई दे तो क्या करता है, फट से हार्ट ऐसे बना देता है और किसी को फॉरवर्ड करता है, देता है। ये आजकल तो वो रोज डे भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी हार्ट यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेम के लिए है। उसके बाद जाओ, अच्छी डकार आती है, पेट भर जाता है, तो क्या अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। और हमारी पूरी शरीर की बैलेंस्ड हेल्थ कब रहती है, कि जब हम आनंद की अनुभूति करें। और शक्ति स्वरूप कब हम फील करते हैं, जब हम एक एक हड्डी हमारी बॉडी की जो है पूरी सिस्टम वो ठीक रहे, तो शक्ति स्वरूप भी अनुभव करते हैं। तो ये आत्मा के सातों गुण जो है वो पूरी बॉडी सिस्टम के साथ हमने डॉक्टर हमारे सतीश गुप्ता यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने सेट करके सबको समझाया। तो ये कैट थियरी में भी आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें ये आत्मा के सातों गुणों को, शरीर की सातों सिस्टम को ठीक रखने के लिए साथ साथ लेके चलना है। तो ऑटोमेटिक आप जिसे देखते हैं, आप किसे देखते हैं, शरीर को। आत्मा दिखती, आत्मा तो छोटी बिंदु है, वो तो दिखती ही नहीं कभी। इसलिए ये सातों सिस्टम के साथ अगर आत्मा के गुण हमने सेट किए हैं तो ऑटोमेटिक इमर्ज होगा याद, क्या, खुद की आत्माभिमानी अवस्था। आत्माभिमानी अवस्था होगी तो आत्मा का पिता परमात्मा निराकार शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप जो है वो याद आएगा। और वो याद आएगा तो क्या याद आएगा, हाथे ते साथे यानी कि श्रेष्ठ कर्म। तो ये आत्मा के श्रेष्ठ कर्म के लिए प्रॉस्पेरिटी लानी है तो क्या चाहिए, मेन पीस एंड पवित्रता, प्योरिटी, दोनों, शांति सुख पवित्रता, सब साथ साथ आत्मा के गुण चलेंगे तो हमसे वो दिन दूर नहीं कि जब हम सोने की दुनिया में चले जाए। गोल्डन एज वहां क्या कुछ काम नहीं है, खाना पीना और सोना। तो सोना दोनों अर्थ में हो गया, गोल्ड भी है और स्लीप भी है। तो ये बहुत सुंदर परिभाषा कर्म की अगर हम साथ रखेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारा ये जो मिशन है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, प्रजापिता ब्रह्मा ने हमें जो दिया, प्लीज ये सब याद रखें कि ये प्रजापिता है, प्रजापति नहीं। सब समझते हैं कि पति और पिता में कितना अंतर होता है। हम किसी के मुंह से प्रजापति सुनते हैं तो मन में थोड़ा दुख आता है कि ये क्यों ज्ञान सही नहीं उठाते। ये पिता है साकार में सर्व आत्माओं का, क्योंकि उनके माध्यम से निराकार शिव परमात्मा ने हमें, परमपिता ने ज्ञान दिया, इसलिए इनको प्रजापिता कहते हैं, प्रजापति नहीं। इसलिए क्योंकि गुजरात में ये कहावत बहुत, ये सरनेम बहुत मानी जानती है प्रजापति, तो जल्दी से प्रजापति मुंह में आ जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ हम प्रजापिता ब्रह्मा से ये ज्ञान सुनते हैं। देता कौन है, देता है निराकार शिव परमात्मा जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और उनके मुखारविंद का आधार लेकर के हमें ज्ञान समझाते हैं। तो हमें, हमारा जो मिशन है उसमें आप सब सहयोग देने के लिए आ गए हैं, आमंत्रित हुए हैं और आगे भी अपना जीवन अपनी सोच बदलकर बदलेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आज का मेरा सेशन समाप्त करती हूँ। आभार। थैंक यू।
थैंक यू वसुधा बहन जी, आपने हम सभी को इस चीज के बारे में अवगत कराया कि जो राइट कर्मा का आधार है वास्तव में सोल कॉन्शियसनेस स्थिति, और उस सोल कॉन्शियसनेस स्थिति को अपन कैसे डेवलप्ड करें, जो जिसका सत्र आज आप सभी को आज के सुबह के सत्र में अटेंड किए हैं, तो और साथ साथ आपने वसुधा के बारे में बताते हुए कि विश्व एक परिवार है, और जब हम खुद को आत्मा समझकर हमारे कॉन्टेक्ट में जो भी आते हैं उनको भी जब हम आत्मिक दृष्टि के द्वारा उन्हें हम देखते हैं और उनके प्रति हमारे अंदर मन के अंदर वो भाव रहता है, तो जरूर ये जो वसुधा कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है ये बात तभी सार्थक होती है। तो यानी आपने हम सभी को जो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मुख्य कोर्स है सोल कॉन्शियसनेस का, उसके ऊपर बताते हुए राइट कर्मा के ऊपर आपने बहुत अच्छे से इस सेशन को आपने कंडक्ट करा, आपका एक बार बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद है। अभी हमारे बीच में है हमारी आदरणीय बी के भरत भूषण भाई जी, तो मैं पहले बहनों को आमंत्रण करना चाहूंगी कि आप भाई साहब को बैच और गुलदस्ते के द्वारा भाई साहब का सम्मान करेंगे, और साथ साथ आप सभी भी करतल ध्वनि के द्वारा भाई साहब का सम्मान करें। हमारे आदरणीय भरत भूषण भाई जी जो सिविल इंजीनियर रह चुके हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इस डिपार्टमेंट में आपने सिविल इंजीनियरिंग की जॉब करते हुए तत्पश्चात जब आप इस संस्था के साथ आप इस संस्था के कॉन्टेक्ट में आए तो तब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को और बहुत अच्छे से अपलिफ्टमेंट करने के लिए और आपका विशेष स्पिरिचुअलिटी में रुचि होने के कारण आपने अपने पूरे जीवन को इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आपने डेडिकेट करा, और साथ साथ आपने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर कार्य सेवाएं आपने अपनी प्रदान की, कई आपने ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन्स आपने शुरुआत की, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि बहुत सारे हिस्सों में आपने अपनी अथक सेवाएं प्रदान की। मैं स्वयं नॉर्थ ईस्ट से हूं, तो भाई साहब आप हमारे यहां नॉर्थ ईस्ट में भी 2 महीना पहले ही आकर के आपने अरुणाचल और अपर असम आदि कई क्षेत्रों में आपने अपनी अमूल्य समय देकर बहुतों को वहां के जन जन को आपने आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराकर बहुतों के जीवन को आपने पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप निमित्त बने, तो ऐसे आदरणीय भाई साहब का हम एक बार तहे दिल से फिर अभिनंदन करते हैं। और अभी हम भाई साहब से भी सुनेंगे आज के विशेष इस टॉपिक के ऊपर, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू राइट कर्मा, भाई साहब इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे।
ओम शांति। रिस्पेक्टेड भ्राता मुकेश तिवारी जी, चीफ जनरल मैनेजर गेल इंडिया लिमिटेड, और अन्य वक्ता मंच पर विराजमान डॉक्टर वसुधा बहन जी, मन संचालिका ब्रह्मा कुमारी रूपा बहन, इंचार्ज कोहिमा सेवा केंद्र, और सभा में विराजमान हमारी विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर भ्राता सुरेश गुप्ता जी, बहन अंजलि जी, और सभी डेलीगेट्स पार्टिसिपेंट, बहुत ही खुशी की बात है। बड़े ग्रुप का कुछ और मजा होता है, छोटे ग्रुप का कुछ और मजा होता है, नहीं? बड़े ग्रुप में ऊपर कल आज सुबह जो इनॉग्रल फंक्शन था, कल भी रिसेप्शन था, फिर इसके बाद ये एक वर्कशॉप टाइप रखा जाता है, भिन्न भिन्न स्ट्रीम रखी गई है एक एक टॉपिक पे, ताकि जिसके इंटरेस्ट का जो टॉपिक हो तो वो च्वाइस के अनुसार उनको मिल सकता है। तो अच्छा सिस्टम है। और कुछ भाई बहनों को भी कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए भी समय दिया जाता है। तो आज का विषय बहुत अच्छा है इस वर्कशॉप का, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू राइट कर्म। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का एक मन में प्रश्न रहता है कि राइट किसको कहें, रॉन्ग किसको कहें। नहीं? कई बार कोई किसको राइट कहें, किसको रॉन्ग कहें, उनको डिसीजन करना ही मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी बातें, क्योंकि इंटरैक्टिव एक्शन है, इंटरैक्टिव सेशन है। एक डॉक्टर बहुत ही कूल नेचर के हैं, कभी क्रोध नहीं करते थे। और कोई पेशेंट किसी ने एडमिट किया, उसकी कहीं कोई किसी प्रकार की लापरवाही नहीं थी, लेकिन वो किसी कारण, आप जानते हैं बीमारी ऐसी चीज है जो सीरियस नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी बीमारी से भी एकदम पकड़ के टाइम आया होता है तो एक्सपायर हो जाते हैं। और कोई बहुत सीरियस, बचने की उम्मीद ही नहीं, डॉक्टर ने भी बता दिया, वो बच जाते हैं। नहीं तो एक ऐसा ही आया पेशेंट, को इतना ज्यादा वो नहीं था सीरियस, लेकिन वो एकदम हालात बिगड़ी और डॉक्टर कोशिश किया लेकिन फिर भी खत्म हो गया। और आप जानते हैं खासकर गांव के इलाके से जो पेशेंट आते हैं, और गांव का तो झुंड का झुंड आता है, तो उन्होंने ये डॉक्टर पे दोष जैसे रख दिया। अब वो पूरा झुंड बन के ये नहीं, ऐसा नहीं किया, लापरवाही बरती, ये पता नहीं क्या क्या, जो गांव के जाट थे सारे बहुत जोरदार। तो अब वो बहुत पहले तो कूल से ही करता रहा, प्यार से, नहीं जी ऐसा नहीं है मैंने, पर वो कहां सुनने वाले। अब आप बताइए, क्या वो शांतिपूर्वक ही अपनी बात का, वो शांति, वो तो सुनाई ना देवे, या उसे जोर से लाउडली कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसने मेरे से प्रश्न पूछा डॉक्टर ने कि मैं क्या करूं, राइट कर्मा क्या है, यहां पर आता है ना, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, मुझे क्या करना चाहिए, है शांत रहना चाहिए। कैन यू बिलीव, एक स्थान पे एक डॉक्टर को मार तक दिया था लोगों ने। उसने भी यही सोचा, पर उसको उस डॉक्टर की याद आ गई। फिर उसने बड़े लाउडली बोला, अरे आप बताओ मैंने क्या, कौन सी चीज की कमी छोड़ी, किस वक्त क्या चीज नहीं दी, ये क्या सब नर्सेज और सब, बड़ा जोर से बोला। तब भीड़ थोड़ा शांत हुई और फिर चली गई। अब बताओ राइट कौन था उनमें से, जो शांत बोला या जो लाउडली बोला। और यहां तो कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, व्हाट इज द राइट कर्म। हाँ देखो अब चेंज हो गया ना आप सबका। पहले आप कह रहे थे शांत शांत शांत, फिर जब मैंने सामने रखी परिस्थिति के कैसे उसको मार तक दिया एक डॉक्टर को, और दूसरा डॉक्टर फिर लाउडली बोला, तो वो कन्विंस हुए और आखिर वो भाई इतना उससे कह रहा है निश्चय से। तो उस तो एक्चुअली वो कोई क्रोध नहीं है कि उसने कोई क्रोध करके बड़ी जोर से कहा। आपको रूप ये धारण करना पड़ सकता है कहीं किसी को समझाने के लिए, आपके इंटेंशन कैसे हैं, बात ये देखी जाती है। उसका इंटेंशन था अपनी राइट बात को उनको समझाना, और वो शांतिपूर्वक वो समझ नहीं रहे थे, वो समझ रहे थे चुप चुप है ना, ऐसा बोल रहे गुनाहगार है। जब इस ढंग से उसने बात कही तो उनको बिल्कुल समझ में आ गई। फिर भी इसको ये हो गया समय प्रमाण प्रसिद्ध। वैसे हमारी नेचर ये नहीं, घर में भी हर जगह हम बहुत गुस्सा करके हम बात करें, वहां नेचर मेजोरिटी प्रेम की हो, ऐसी परिस्थिति में भी फर्स्ट फार्मूला आप वही अपनाएं। ऐसा नहीं है कि ऐसी परिस्थिति प्रेम से नहीं हैंडल होती, हमारी बहुत बहने भाई करते हैं हैंडल ऐसी बड़ी परिस्थिति भी, पर इतनी स्पिरिचुअल पावर चाहिए, वो पावर नहीं होती ना तब लाउडली उसको प्रयोग करना पड़ा। स्पिरिचुअल पावर हो तो आप अपने वाइब्रेशन से भी प्रेम से उन्हें कर सकते हैं शांत, समझा सकते हैं। हमने बहुत ऐसी परिस्थितियां की हैं उसमें बिल्कुल ठीक हो गया मामला, और हमारी सब बहनें करती रहती हैं, बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती हैं। तो राइट कर्मा, केवल हम राइट कर्मा तो यही है मधुरता और सब चीजें, लेकिन इसमें थोड़ा स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने की जरूरत है। आपके वाइब्रेशन ही उसे, इवन बिना बोले भी लोग पैरों में आके पड़ जाते हैं। आपके वाइब्रेशन इतने पावरफुल हों, आपने सुना होगा कहीं हिंसक प्राणी भी आके कुछ नहीं कहते, बिल्कुल शांत होके बैठ जाते हैं। तो राइट तो वही है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें कभी कभी, लेकिन उस प्रयोग को, शक्ति को बढ़ाएं, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट को बढ़ाएं। अब एक व्यक्ति ऑनेस्ट है, आप में से भी बहुत सारे ऑनेस्ट होंगे, राइट कर्म, व्हाट आर द राइट कर्म, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कहते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, आप में से कोई है जो कहते हैं जन्म से लेके आज तक एक रुपए की भी भाई साहब बेईमानी नहीं की है, वो हाथ खड़ा करो। वसुधा बहन अच्छा एक दो, अच्छा बाकी सब नहीं, अच्छा ओके चलो। पिछला तो बीता, जो आज से संकल्प, राइट कर्मा का सेशन है ना, कोई राइट संकल्प तो ले, जो आज से संकल्प करते हैं कि एक रुपए की भी हम आगे कभी भी करप्शन नहीं करेंगे, हाँ गलत धन अपने पास नहीं आने देंगे, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा सभी ने किया, वाह कांग्रेचुलेशन, सबके लिए ताली बजाओ। भले वो फोटोग्राफर नहीं है पर ऊपर वाले ने ले लिया आपका फोटो, वो डिलीट भी नहीं होगा, दिखाएगा। अच्छा एक फिर परिस्थिति मैं आपके सामने रखता हूं, संडे का दिन है, आप बाइक लेके चले हो, अचानक कोई पुलिस वाला, अरे पेपर, बाय द वे पेपर आपके पूरे नहीं है, जाना भी आपको जल्दी है, अरे चालान कटेगा। अब आपको पता है चालान कटेगा, मुझे 3 दिन कोर्ट में जाना पड़ेगा, पैसा भी 2000 भरना पड़ेगा, यार इसको 200 रुपया दे, जहां 100 रुपया दे जान छुड़ा। अब क्या करेंगे आप बताओ, चालान कटाएंगे या 100 रुपया देके जान छुड़ाएंगे? 100 रुपया, अभी तो सबने हाथ खड़ा किया था, राइट कर्मा, ऑनेस्टी का संकल्प अभी तो आपने किया था, अभी अभी क्या हो गया? हाँ कन्विंस करेंगे, सचमुच गलती है, आप समझते हैं कुछ ही रह जाती है, पेपर्स भी रिन्यू नहीं कराया, कुछ और कोई ना कोई रह जाता है, इंसान है। हाँ जी, तो क्या हुआ, हमने रॉन्ग कर्म किया, 100 रुपया दिया या राइट किया? हाँ रॉन्ग किया, और फिर चारा क्या है, फिर 3 दिन चक्कर काटो, जीवन में तो राइट कर्मा करना है ना। हाँ बात यह है तो रॉन्ग नो डाउट, लेकिन इसमें भी मैं यही कहूंगा, अगर स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट हो ना, हमारे साथ कई बार ये परिस्थिति है, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं फटाफट पकड़ने, ओवर स्पीड रोक दिया और रुके हैं, वो सब कुछ करें तो आपको मालूम है फ्लाइट भी छूट सकता है। फिर हमने पैसा नहीं, लेकिन प्यार से समझाते हैं ना, कौन है हम, क्या कर रहे हैं, किस तरह किस काज के लिए जा रहे हैं, 99% हो जाता है। अगर फिर भी देना पड़े तो दुख नहीं होता हमें, हम सोचते हैं कि ये जो भी जुर्माना लगा गया कोई बात नहीं, गवर्नमेंट सेवा में ही गया ना, कहां गया, कहां गया टैक्स जो गया, गवर्नमेंट सेवा में गया ना जो भी, उसको हम दुखी नहीं होते कि क्या हुआ, और सेवा कर रहे हैं कुछ उस सेवा में गया है ना, और गलती तो है, आगे से रियलाइजेशन रहेगा। तो इस तरीके से समझो हमें, रूल हैं अलग अलग देशों के। अब वो हमारे चाइना में एक बहन है, सपना बहन गोंगजोवाल, वो कह रहे थे मैं अभी गया था हांगकांग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि कुछ देशों में और भी यूरोप, वो कहती थी हांगकांग का वो भले वीजा जो होता है वो भेजते हैं ऑनलाइन, लेकिन वो प्रिंट निकाल के ले जाना। अच्छा, कहते मैंने भुगता हुआ है, बाय द वे प्रिंट निकाला था, मैंने उन्हें दिखाया तो केवल एक प्रिंट पेपर का ही उससे बड़ा पिंच हुआ, मतलब इतना $400 देना पड़ा। नियम ऐसे हैं, दुख तो होता है ना, समझाया लेकिन नहीं समझे, कई जगह करना पड़ता है। हमारे मृत्युंजय भाई न्यूजीलैंड में बता रही थी कि वहां फ्रूट ले जाना मना है, बाय द वे ध्यान नहीं रहा होगा पूरे बैग में से एक केला निकल आया, तो उन पे भी $400 लगा न्यूजीलैंड वाला, बहुत महंगा पड़ा। तो मतलब कहने का भाव ये है, कई जगह ऐसा हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी जगह हमने देखा 99% विद द पावर, स्पिरिचुअल पावर, बहुत कन्विंस हो जाते हैं लोग। कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उसमें फिर एक चीज है कि उसमें ये ध्यान रखना है, उसमें भी दुखी नहीं होना। एक तो शिक्षा मिली और दूसरा सावधानी मिली, और गया तो चलो कुछ सेवा में सरकार की गया, कोई वेस्ट नहीं गया, पब्लिक सेवा में ही यूज होता है जो भी फंड यूज होता है वो, ये सोच के चले। फिर भी राइट कर्मा कौन कौन से हैं वो हम आपके सामने थोड़े थोड़े हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे। एक राइट कर्मा, जितने भी सेल्फलेस सर्विस हम करते हैं, सेल्फलेस, वो भी हमारे राइट कर्मा है। हाँ, जो जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ। अक्सर करके जितनी समाज सेवी संस्थाएं हैं ना, आपको लगेगा बड़ा राइट कर्म कर रहे हैं, रोटरी क्लब, लाइन क्लब, सब बड़े बड़े वो परिषद, भारत विकास, बहुत करते हैं सेवा, लेकिन सच बताएं पीछे उनके नेम फेम का बहुत बड़ी भावना होती है। कि जब आपको एक साल के लिए प्रेसिडेंट बनाते हैं सेक्रेटरी, और उसमें वो खूब अच्छी तरह करते हैं, जब वो प्रेसिडेंट से हट जाते हैं फिर सोचते हैं भाई अब मेरे से तो गई, अब आप तो सेवा, ये नहीं कि मुझे ओहदा मिले तब सेवा करूं, ठीक है ना, ओहदा मिले तो भी सेवाधारी, ना मिले तो भी सेवा, सेवा तो एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। ओहदा यहां भी मिला हुआ है पर कईयों को नहीं भी मिला हुआ, तो क्या हुआ, और सेवा वो कहीं बहुत अधिक कर रहे हैं। अब आप बताओ हमारी शिवानी बहन इंस्टीट्यूशन में सबसे अधिक सेवा कर रही है पब्लिक की, कितना जाति, कितने लोग, अगर आप पूछें क्या डेजिग्नेशन यहां मिला हुआ है, कोई डायरेक्टर बनाई हुई है या कुछ और, नो नॉट एट ऑल, किसी प्रकार का वो नहीं मिला हुआ। वो अपने डेजिग्नेशन में लिखती यही है कि मोटिवेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, बस। बाकी इंस्टीट्यूशन का कोई ओहदा उनको बहुत बड़ा दिया गया हो, सेवा का है ना भावना, अब सेवा की तो कमी नहीं की हुई, सेवा बहुत अच्छी है, तो सेल्फलेस सेवा। और इसी तरीके और राइट कर्मा कौन से हैं, जो जो चीजें तीन शब्द बार बार यूज करें तो वो राइट कर्मा बहुत अच्छे बन जाएंगे। कौन से हैं तीन शब्द, वो है सॉरी, प्लीज, थैंक यू। मैं गलती किससे नहीं होती, मनुष्य गलती का पुतला है। हमारी दादी जानकी चीफ थी ना, वो कहती थी अरे भाई मैंने सॉरी की तो क्या मेरी साड़ी खराब हो गई। तो इसलिए हम कहीं गलती होती है, प्यार से रेस्पेक्टफुली रियलाइज करके सॉरी मैंने आपको हर्ट किया, आगे ध्यान। लेकिन सॉरी भी करेंगे ना वो भी बड़ा ईगो से करेंगे, अच्छा बाबा सॉरी कह दिया ना, सॉरी प्लीज अब जाओ, दिस इज नॉट द सॉरी। दिल से रियलाइज करके आई एम वेरी सॉरी, हाँ अब तेरी आंख खुली फिर आपको ईगो आ सकते हो, अपने को तो देख तेरे पार्ट से भी ना 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 अब आप ठीक है, मेरे पार्ट से जो गलती है उसके लिए मैं सॉरी, सचमुच उस वक्त आंख बंद थी, अगेन आई एम सॉरी, हमेशा के लिए कूल हो जाएगा। कुछ भी कहे आपको उसका कुछ नहीं कहना, लेकिन खुद का स्वीकार करना है। और प्लीज लेने का, मदद लेने का भी तो तरीका होता है ना, तो वो भी जितना ज्यादा हम बहुत रेस्पेक्टफुली किसी को कोई शब्द कहते हैं और कुछ कहते हैं तो बहुत मदद मिलती है। कॉपरेशन लेना तो एक तरीका है, उस तरीके को अगर हम अपनाएं तो बहुत बड़ा कार्य है। अब देखो कितने कारपोरेट हैं, अब उनके पास CSR फंड होता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक्चुअल कई CSR के हमें मिलते हैं बड़े, वो कहते हैं जी जहां हम देते हैं संस्थाओं को, सच पूछो प्रॉपर उस ढंग से नहीं लगता है, उसमें से कितना उड़ा लिया जाता है, कुछ वो किया जाता है, परंतु उन्हें खुशी है कि ब्रह्मा कुमारीज में एक बड़े ढंग से सही प्रॉपर यूज, और एक पैसे का भी वो नहीं करते दुरुपयोग। तो एक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में मदद करना है ना। तो हमारे पास पानीपत रिफाइनरी, हम सेवा करते हैं वहां पिछले 15-20 वर्षों से, तो ट्यूसडे एंड फ्राइडे को क्लासेज लगती हैं। तो उनकी मैसेज आई हमारे वहां सेंटर पे, बहनों ने बुलाया था, उसने हमसे पूछा क्या आप सोशल सेवा करते हैं। हमने बताया दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर, रोजाना 60-70 पेशेंट आते हैं, फ्री दवाइयां देते हैं। कहती अच्छा, तो कितने के महीने की दवाई? मैं कह लगभग 1,00,000 रुपए की दवाइयां इंजेक्शन फ्री बांट देते हैं महीने। कह तो हम भी कुछ कोऑपरेट कर सकते हैं इसमें, तो रिफाइनरी अच्छा इंटरेस्ट लेती है। मैं क्यों नहीं। कह अच्छा आप मेरे घर आ सकते हैं, मैं अपने बॉस से मिलाऊंगी। ईडी साहब थे और वो नए आए थे, हम तो मिले नहीं थे अभी तक उनसे, पुराने वाले तो जानते थे, वो अभी 2 महीने से आए थे। तो हम गए, पर उस पर इंप्रेशन अच्छा था ब्रह्मा कुमारीज का, पहले भी और मिसेज से भी अच्छा पड़ा हुआ। तो हम कुछ दिनों बाद टाइम मिला तो हम कॉल करके उन्हें, मैं कहा कुछ दिनों में जब मिलेगा आऊंगा। गया तो उन्होंने उनको मिलाया, कहने लगे हाँ जी बताइए। मैं कहा जी ऐसे ऐसे मैडम आए थे। वो कहने लगे हम भी कुछ कर सकते हैं मेडिसिन में। कहते क्या उसमें वो है? मैं लगभग रिफाइनरी के आप ईडी के पास आए, ये कोई प्रोजेक्ट है कोई छोटा सा, आपकी संस्था कितने अच्छे काम कर रही है। देखो सामने से खुद कहा क्या, कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट दीजिए। मैं तो सोच रहा था ये भी पता नहीं करेंगे ना करेंगे अक्सर करके लेकिन उन्हें कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट दीजिए। मुझे याद आया कि भाई बाउंड्री वाल बननी। मैं कह फिर तो बाउंड्री वाल का कार्य, पर वो बड़ा बजट हो जाएगा 20-1 लाख का। बजट की चिंता नहीं कीजिए, बाउंड्री वाल ठीक है वो ठीक, और कुछ है? मैं कह वाह, मैं कह ठीक। मैंने कहा हमारा जो है ना नीचे फ्लोरिंग भी रहा हुआ है, कच्चे में आते हैं लोग बरसात में, तो फिर थोड़ा सा डिस्पेंसरी तो सब पक्का है पर आने का रास्ता वो, तो उसमें ये ठीक है। मैं कह पर बहुत बड़ा असर हो जाएगा बजट, कि उसकी चिंता नहीं करो, परसों आएंगे मेरे लोग वो सब आके। सचमुच वो आए और सब एस्टीमेट बना के गए, एंड मैं समझता हूं 2-3 महीने में 55 लाख का प्रोजेक्ट वो, बाउंड्री वाल भी और फ्लोरिंग। अब देखिए उसको एक इंप्रेशन था, खुद से पूछा इस संस्था के लिए हम कुछ कर सकते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट दीजिए, कुछ और अच्छा बताइए। और कई लोग उनके पास चक्कर काटते रहते हैं 1-1 साल तक तो इस तरीके, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, तो कई स्थानों पे कई जगह हमने देखा है इस व्यवहार के कारण ही। और जब हमारे अंदर वो हो तो फिर बहुत कुछ जो है उसमें भगवान जो है कराने के निमित्त बनाया। ये तो केवल मैं एक छोटा सा बताया, इससे बड़े बड़े कार्य भी केवल एक बार ही मिले और मिलते ही इतने प्रभावित हुए और लोगों ने पता नहीं कितना कुछ कर डाला बहुत, लेकिन अच्छे कार्य में, सोशल कार्य में। ये तो इस तरीके सॉरी प्लीज, और तीसरा बताया थैंक यू। तो हम थैंकलेस ना बन जाएं, भगवान का भी दिल से शुक्रिया करें, सबका शुक्रिया करें, आसपास पड़ोस अड़ोस जो भी मिले उनका दिल से शुक्रिया करें। तो इसको कहेंगे हमारे जीवन में ये चीजें अगर आ गई तो सचमुच राइट कर्म। फिर भी मैं कंक्लूड करता हुआ, राइट कर्म करना चाहते हैं तो 7P, व्हाट आर दो 7P? फर्स्ट है पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। टाइम इज ए ग्रेट हीलर, टाइम विल कम ऑल टूगेदर द सिचुएशन विल चेंज, लेकिन थोड़ा पेशेंस तो रखो, पेशेंस नहीं रखते. एंड इफ देयर इज नो पेशेंस डेफिनेटली यू विल बिकम पेशेंट. इसलिए हमें पेशेंस रखना भी सीखना चाहिए. नो हरी नो वरी नो करी हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप टॉकिंग इन हरी वॉकिंग इन हरी एवरी टाइम पेशेंस पेशेंस. तो एक ये चीज जीवन में अपनाएं. दूसरा है पॉजिटिविटी. बी पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव स्पीक पॉजिटिव एवरी टाइम पॉजिटिव. पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना तो जीवन बहुत महान बन जाएगा. पति ने पत्नी को कहा कि एक कप चाय ले आओ. चाय ला रही थी रास्ते में ठोकर लगी. भरसक प्रयास किया आधी चाय गिर गई और आधी बच गई. नाउ थ्री एटीट्यूड. नंबर वन आंखें फूटी है नीचे चाय गिरा दी. नंबर टू अरे ये क्या किया चलो आगे ध्यान रखना. नंबर थ्री अरे वाह ठोकर लगने के बाद भी आधी चाय बचा ली. देखो कितना फर्क है. एटीट्यूड है ना. एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव. जिसने कहा आंखें फूटी नीचे चाय गिरा दी कितना घर में टेंशन पैदा कर दिया. कोई तेज तरार होगी क्योंकि तेरी भी फूटी है नहीं फूटी है तो फोड़ देती हूं बाकी आधा कप उसी पे डालेगी. हु इज गोइंग टू टॉलरेट. और एक ने उत्साह पैदा कर दिया. अरे वाह ठोकर लगने के बाद भी आधी चाय. डियर चिंता ना करो अगर आगे ठोकर लगी ना पूरी बचा के दिखाऊंगा. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. हम किसी को उत्साहित भी कर सकते हैं और किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हैं. तब कितना सुंदर किसी ने कहा खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था नीचे कीचड़ ऊपर आसमां में चांद देखा. किसी ने कीचड़ में कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा. ये डिपेंड करता है हमारे नजरिए पे. कोई कीचड़ में भी कमल देख रहा है कोई चांद अरे दाग ही तो लगा है. जिस चांद की कितनों ने अच्छी तुलना की कवियों ने. इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा मगर जीवन में इसको पॉजिटिव बनने के लिए बस ये सोचो हर बात में कुछ कल्याण है हर बात में कुछ. फिर नेगेटिव नहीं चलेगा. फिर बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे सदा प्रसन्न रहेंगे. इसमें भी कुछ कल्याण है इसमें भी कुछ कल्याण है. देयर इज समथिंग गुड इन एवरी सीन. ये हमेशा सोच के चलें. फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिकल. ब्रह्मा कुमारी बिलीव इन प्रैक्टिकल. नहीं पीपल आल्सो बिलीव इन प्रैक्टिकल. पीपल डोंट बिलीव व्हाट यू से पीपल वुड बिलीव व्हाट यू डू. तो मनुष्य का जीवन में प्रैक्टिकल एक बहुत बड़ी चीज है. ठीक है ना. इसलिए उसको प्रैक्टिकल करना एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट वो है. तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हमें प्रैक्टिकल. हम जो भी बोलते हैं इस मन से अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतार के बोलते हैं. जीवन में पूरा लक्ष्य रहता है कि ये जो कुछ मैंने जीवन में उतारा वही मुझे बोलना है. तो इसलिए उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो जीवन बहुत महान बनेगा जीवन श्रेष्ठ बनेगा. एक छोटी सी एक्सरसाइज करा दूं मैं आपको करा दूं प्रैक्टिकल पे. कंडीशन ये है कि जो मैं कहूं वो तुरंत ठीक है. दोनों हाथों से पैरों को टच करें फिर घुटनों को टच करें फिर स्टोमेक को टच करें फिर कंधों को टच करें फिर गालों को टच करें. कहां गए आपके गाल सबके. एक दो को छोड़ के कहां गए. क्यों क्या शिक्षा मिली. पीपल डोंट बिलीव व्हाट यू से. जबकि मैंने कहा था जो कहूं वो करना. आपने क्या किया जो मैंने किया. मैंने यहां हाथ रखे तो सब ने यहां रखे. इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जीवन में प्रैक्टिकल होगा तो हम औरों को अधिक अच्छी तरह शिक्षा दे पाएंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट है पोलाइटनेस. मनुष्य के जीवन में पोलाइटनेस मतलब सारी प्रॉब्लम होती है ईगो के कारण. अहम भाव को छोड़ के पोलाइट बने नम्रता. फलानी ही वृक्षा नमंती. फल वाले वृक्ष झुके होते हैं. गुणानी ही जना नमंती. सज्जन पुरुष भी झुक जाते हैं. दुष्ट पुरुष और सूखा वृक्ष टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं. इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए पोलाइट बने, उससे हमारा जीवन बहुत महान बन जाएगा। दो कजन ब्रदर का बोलचाल बंद हो गया, 3 महीने तक बोले नहीं। किसे क्यों नहीं बोलते ये बात, अरे इतनी छोटी सी बात बोलो। 1 मिनट सोच के कहते अच्छा मैं तो बोलूंगा, शर्त यह कि पहले वो बोले। फिर ईगो आ गया कि पहले मैं क्यों झुकूं। फिर उसको बात किया, अरे छोटी सी बात छोड़ो। उसने भी सोच के कहता अच्छा मैं तो बोल लूंगा, पर शर्त यह पहले वो बोले। केवल इस बात, दोनों दुखी भी है ना बोले बिना। फिर दोनों केवल इस बात के कारण 1 साल बीत गया, 5 साल तक बोले नहीं। फिर उसको एक बार चेस्ट का पेन हुआ तो हार्ट के डॉक्टर के पास गया। उसने इसे जी किया, अरे भाई तेरे को तो ब्लॉकेज सर्जरी होगा, उसे एडमिट कर लिया। तो रिलेटिव आ रहे थे मिलने, उसने सोचा वो भी बात करता हूं खत्म, पता नहीं अब बचूं ना बचूं। उसको मैसेज भेजा तो कजम ब्रदर दौड़ा हुआ आया मिलने, कि यार तू मिला बोला नहीं 5 साल, यार तू नहीं बोला, मैं तो बोलना चाहता था, यार तू नहीं बोला। अच्छा खैर, जिस बात से थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था क्लियर कर ही रहे थे, इतने डॉक्टर दौड़ा हुआ आया, कहता है वो हार्ट का पेशेंट कौन है? कि मैं हूं डॉक्टर साहब। क्या ऐसा है, हमारी वो ECG की मशीन थी ना वो खराब थी, आपका हार्ट ओके है, आपको शाम को डिस्चार्ज कर रहे हैं। कि डॉक्टर साहब मेरा हार्ट ओके है? क्या हाँ। वो जब चला गया डॉक्टर, कहते भाई सुन ले, मेरा हार्ट ओके है, तेरी मेरी वही रहेगी जो पहले थी। फिर ही गो आ गया, पहले सोचा मैं तो जा रहा हूं, कहा भी तो जान है मेरे। हमारे यहां बहनें अक्सर सुनाती हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो मनुष्य को पोलाइट बनना ये एक बहुत जरूरी है, इसको भी जीवन में अपनाएं। कितने पियोगे भाई? 4। अच्छा पांचवा है फिर पंक्चुअलिटी। पंक्चुअल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्षमा करना मैं थोड़ा सा डिले आया आज उसमें, लेकिन मैंने बहन जी से फोन करके स्वीकृति ले ली थी मन संचालिका से, बहुत आवश्यक ऐसी सेवा आ गई थी जिस कारण मैंने उन्हें कहा कि मुझे 20 मिनट पीछे आऊंगा। तो लेकिन अक्सर हमारे जीवन में कोशिश होनी चाहिए पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो जीवन में बहुत महान बना देती है, इसलिए उसको भी अगर हम जीवन में रखेंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे। फिर 6th है प्रेज एवरीवन। हर व्यक्ति की दिल से प्रेज करें, दिल से प्रशंसा, छोटों की भी बड़ों की भी साथियों की भी। हर एक को कुछ ना कुछ तो भगवान ने विशेषता दी है, उनको 2-3 को जिससे आपको हो उसके तो बल्कि खास लिखें गुण और चिंतन करें कितने बड़ी विशेषताएं। लेकिन बुराई का चिंतन अधिक करते हैं और गुणों का चिंतन कम करते हैं। ये हम सोचे हम किस चीज के ग्राहक हैं, और बुराई का चिंतन करते हमारे अंदर घृणा कितनी आ जाएगी और फिर टेंशन होगा। इसलिए हम कोशिश करें कि अच्छाई का चिंतन करें, है ना। स्पेशलिटी, व्हाट इज द स्पेशलिटी, हर एक की स्पेशलिटी को करके तब जो है वो जीवन में श्रेष्ठता आएगी। तो ये एक अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेज एवरीवन, हर एक के दिल से प्रशंसा करें। ठीक है, करेंगे करेंगे, जो कहते करेंगे हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, सबके लिए ताली बजाओ। आज से ही करना है, इसके लिए क्या एक शब्द याद रखो, क्या? यू आर ए वेरी गुड पर्सन, आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कहेंगे ऐसा कहेंगे। आप घर जाओगे तो वाइफ को क्या कहोगे, क्या कहेंगे वाइफ को? हाँ, क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छे हैं। कहेंगे ठीक, असर ठीक पड़ा है माउंट आबू से, वो सोचेंगे। पर कितने दिन कहेंगे? हाँ, तो कोशिश करें जाके डिक्लेयर कर दें और कहें कभी मैं भूल जाऊं, हर बात पे उसे दिल से प्रशंसा करें। तो खैर, मैं समय की सीमा के कारण मैं अब इसको यहीं पर समापन करूंगा। हाँ, लास्ट पी बताऊंगा। लास्ट पी है प्रैक्टिस मेडिटेशन जो कि सभी जो सत्र में बहने करा रही हैं, जितना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे हमारे अंदर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे कर्म राइट होते जाएंगे। सबसे राइट कर्मों का बीज है प्रैक्टिस मेडिटेशन, उससे श्रेष्ठ कर्मों की रेखा ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ कर्म बनते जाएंगे। तो ये है प्रैक्टिस मेडिटेशन, जितना प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन का सब कुछ ठीक होता जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ओम शांति, धन्यवाद।
थैंक यू भाई साहब, आपने हम सभी को 7P के बारे में अवगत कराकर और इसके गहरे मीनिंग को समझा करके, और उम्मीद है कि हम सभी 7P के ऊपर फॉलो अप जरूर करेंगे। तो अभी हमारे बीच में जो आज के हमारे इस सेशन के चेयरपर्सन हैं मिस्टर मुकेश कुमार तिवारी जी, जो आप वर्किंग विद गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज ए चीफ जनरल मैनेजर के रूप में आप कार्यान्वित हैं, तो आज आप हमारे इस सत्र के मेन चेयरमैन हैं। तो अभी हम आपसे सुनेंगे इस विषय के ऊपर, जो कि समय की सीमा को, बहुत ही कम समय हमारे पास में बचे हुए हैं, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि भाई साहब हम सभी को संक्षिप्त में जो इस विषय के ऊपर अपना विचार अवश्य रखेंगे। मुकेश जी,
धन्यवाद। रूपा बहन, भाई भारत भूषण, बहन वसुधा, ये मेरे लिए बहुत गौरवान्वित है कि मैं ऐसे लोगों के साथ मंच को साझा कर रहा हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है एक जन समुदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए लगाया है। जो आज कुछ मैंने सीखा और उसको कैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ हम रिलेट कर सकते हैं, यहां पर मैं देख रहा हूं कि कुछ हमारे साथीगण जो है जिन्होंने कैरियर मेरे ख्याल से 5-7 साल से शुरू किया होगा, तो कैसे वो जितना जल्दी हमारे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आ जाए तो उतने ही तेजी से हम जो बोला जा रहा है कैसे हम उसको अपने लाइफ में लेके आए। तो उसके लिए मूल मंत्र क्या होना चाहिए, कैसे उसको आगे लेके जाए। आज जो हमारा सवेर मॉर्निंग का सत्र था उसमें बताया गया कि हमको क्या, हम कौन है, दैट इज हु एम आई, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज बताई गई कि ईश्वर एक है। तीसरी चीज बताई गई प्रकृति क्या है। चौथी चीज बताई गई कि कर्मा क्या है, कि जैसा कर्म मिलोगे करोगे, कर्म आप प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसका फल कर्म के साथ आता है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि कर्म सही कैसे हो, तो उसका जो एक टूल है, जो एक तरीका है, वो है राजयोग। कि अगर वो राजयोग आप करेंगे तो आपका कर्म अच्छा होगा और उस कर्म का फल फिर आपको अच्छा ही मिलेगा। तो जीवन में जो हमको प्राप्त करना है, काफी दुश्वारियां रहती हैं। कई एग्जाम्पल भाई भारत भूषण ने दिया जहां पे हमको हमेशा एक कन्फ्लिक्ट रहेगा कि क्या करना है। तो उस तरीके से कैसे जल्दी से जल्दी हम अपने को ढाल लें और जो विचार हैं, जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, वो काम करें, उसी के तहत दो चीजें लगातार जब भी मैं ब्रह्म कुमारी संस्था से मिलता हूं, दो चीजें हैं, एक है जैसा अन्न वैसा मन और जैसी पानी वैसा वाणी। अब पानी के बारे में ये लोग आपको शिक्षा जरूर देंगे कि कैसे पानी को पावरफुल बनाना है, कैसे अन्न में पावर को डालना है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं और उस ट्रेनिंग के तहत ही आप अपने साथ अपना, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गुजरता है जहां अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं, उनके साथ कैसे काम करना है, वह भी इसका एक हिस्सा बन जाता है। हम सभी लोग हार्वर्ड बिजनेस को काफी मानते हैं। वहां पे एचआर की एक किताब निकली हुई है जिसको हम, अगर ये कोर्स करेंगे तो आपको हार्वर्ड जाने की जरूरत नहीं है। पहली चीज वो बोलते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए आपके बारे में। दूसरी चीज वो बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। तीसरी चीज वो बोलते हैं कि आप में मोटिवेशन होना चाहिए। और चौथी चीज वो बोलते हैं कि आप में एम्पैथी होनी चाहिए, एंड ये सब जब आप करेंगे तो सोशल स्किल आ जाएगी। तो ये चीज हार्वर्ड बिजनेस के 110 ईयर्स हुए उसमें पूरा एक राइटअप निकला हुआ है। और जो हम यहां पे सीखते हैं, हम कौन है, सेल्फ अवेयरनेस हमारी क्या है, तो हम जैसे बोला जाता है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इस चीज को हमें तोड़ना है। और जो यहां का मॉड्यूल 7 डेज का है, आपस में जैसे इंटरेक्ट करेंगे, इवन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो आपके कन्फ्लिक्ट हैं उसको भी अगर आपस में डिस्कस करेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा, और इसी राजयोग के साथ निकलेगा, इसी परिवार के साथ निकलेगा, इसी जो हम लोग सीखेंगे उसको आगे बढ़ाएं। जहां तक बहन बसुदा ने बताया कि कैसे जो है चीजों को आगे लेके जाना है, कैसे चंद्रमा पे और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उन्होंने संबोधन किया, उसमें एक चीज अभी जो आई है, दैट इज कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम चल रहा है कि क्लाइमेट का क्या प्रॉब्लम है, उसमें उन्होंने मंत्र दिया है कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, शायद इस बार इस पे रूल्स बनेंगे। और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट वो हमको अपना देश ही सिखाता है, और उसके तहत इस चीज को आगे लेके जाएंगे। तो हमारे यहां जो सर, मैं आज के समय में अभी जो मेरा पदभार है वो गेल इंडिया लिमिटेड का मैं सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट ही देख रहा हूं, और यहां आके लगता है अगर ये जीवन पद्धति हम भारत नहीं और देशों में भी लेके जाएं तो सस्टेनेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है, जो क्लाइमेट चेंज की है, जहां कहीं पे आप सोचो इटली में अभी 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और हिमाचल में अगर आप जाते हो तो फ्लड हो रहा है, तो इस तरह की जो विपदाएं आई हैं, इसका सॉल्व करने का एकमात्र तरीका कि हम अपनी लाइफ में जितनी जल्दी हो सके इस प्रक्रिया को लेके आएं और कैसे इसको फैलाएं। मेरा यहां पे एक सजेशन रहेगा कि जिस तरीके से जून में एक हमारे पास योगा दिवस है, मैं भारत भूषण भाई से बोलना चाहूंगा कि वो इस चीज को आगे लेके जाएं कि एक दिन अध्यात्म का भी होना चाहिए और जो पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाए, जो उससे पूरी ऊर्जा एनर्जी निकलेगी, तो जो क्लाइमेट चेंज या जो वसुधैव कुटुंबकम की जो आज के समय में जो एक ही पृथ्वी है जहां पे हम सब रह सकते हैं, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो जो हमारा विचार यहां पर है वो पूरे विश्व में फैलेगा। इन्हीं सबके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आप लोगों से सम्मुख हूं कि आप कोई भी अपने प्रश्न हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं, कैसे इस विचार को आगे लेके जा सकते हैं। तो इस विचार को आगे लेके हम लोग जाएंगे, थोड़ा आवाज नहीं आ रही, तो विचार को आगे लेके जाएं तो मनसा वाचा कर्मणा ही एक हमारा मूल मंत्र है, उसी को लेके हम पूरे विश्व में जाएं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेश भाई जी, आपने हम सभी के समक्ष ये विचार रखते हुए हम सभी को आपने ये संकल्प दिया, और हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं अपने मन के अंदर में अगर ये संकल्पों को अभी क्रिएट करें कि जैसे वर्ल्ड में पूरे साल भर के अंदर जैसे एक दिन हम सभी योगा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो जरूर हम सभी आज यहाँ बैठकर संकल्प लेवे कि बहुत जल्दी स्पिरिचुअल दिवस के रूप में भी हम सब अगर मनाएं तो ये भी विचार दूर दूर तक हम पहुंचाएंगे। और जिसके लिए ब्रह्म कुमारीज का जो मेन स्लोगन है कि स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, यानी ये विचार पहले हमें ही अपने माइंड के अंदर में इसको बोना होगा, और उसके पश्चात ही धीरे धीरे ये विचार वाइब्रेशंस के रूप में कैसे हमारे पूरे एनवायरमेंट में, प्रकृति में और बाकी हमारे अन्य हिस्सों में, देश के कोने कोने पर ये विचार कैसे आगे चलकर प्रस्फुटित हो सकता है। एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद है, आपने बहुत अच्छे विचार हम सभी को दिए और अपने विचार रखे। तो आज के इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी
जी, इनके प्रश्न का उत्तर दे दें।
हाँ जी भाई साहब, इनके प्रश्न का जो
इन्होंने एक सुझाव जो दिया कि डे ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है, तो इसी तरह एक ये भी इंटरनेशनल डे ऑफ स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए। बात तो अच्छी है पर मैं समझता हूं मोदी जी ने ये बड़ा अच्छा योगा वाला भी चलाया है, आपको जानकर हर्ष होगा, भारत में आयुष मिनिस्ट्री के अनुसार उनके पास जो रिपोर्ट पहुंचती है, ब्रह्म कुमारी टॉप पे हैं इसको मनाने में, 140 देशों में, और भारत के भी सब सेंटर मनाते हैं। और कितनी बार तो हमारे सुरेश भाई बैठे हैं दिल्ली में, लाल किले उन्होंने ऑफर किया, हमें दिया, लाल किला में प्रोग्राम हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में। अब की बार भी इंदिरा गांधी स्टेडियम में लगभग मेरे ख्याल 25,000 लोग थे उसमें। लेकिन स्पिरिचुअलिटी वाला, जैसे कि आप विश्व की हालत जानते हैं, आज स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ही सब अपना अपना लेते हैं, और हमारा सारा विश्व कुछ धर्मों में बटा हुआ है। क्रिश्चियनिटी समझती है यही स्पिरिचुअलिटी है, मुस्लिम समझते हैं यही है, सिख अपना समझेंगे, हम हिंदू इधर भारत में रहने वाले अपना समझेंगे। इसलिए ये बात तो ठीक है, और वो तो सब करते ही हैं अपने अपने हिसाब से, उनके दिन बने भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ कम्युनिस्ट कंट्री हैं जो भगवान नाम की चीज को मानते ही नहीं है। इसलिए इस पर एक मत हो सारा यूएनओ के सब मेंबर्स, उसमें कई लोग तो उसमें बिलीव ही नहीं करते इन चीजों को, तो योगा को भी कर लिया बहुत बड़ी बात है। और उसमें जितने देश हैं, मैं कई देशों में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे, युगांडा में गया, बीजिंग में गया, हमें टाइम दिया उन्होंने, और हम फिर वो मेडिटेशन भी सिखाते हैं उनको। इस बहाने वो स्पिरिचुअलिटी वाला ही काम इसमें किया जा रहा है सब तरफ। ब्रह्मा कुमारीज को जरूर इंडियन एम्बेसी प्रोग्राम रखती है, ब्रह्मा कुमारीज को बुलाएगी, और वहां सब देश के लोग आते हैं। फिर भी आपके इस संकल्प को और सोचेंगे कि कुछ ऐसे मापदंड जो सब धर्मों के जो है सब स्वीकार करें, ऐसा कोई स्पिरिचुअलिटी वास्तव में होती वो है, वो धर्म से ऊपर है, सब धर्मों का निचोड़ मॉरल वैल्यूज, और उनका कोई दिन हो, बड़ी अच्छी बात। बाकी बहन जी कह रहे थे किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली इंटेंशन देखते हैं, आपके इंटेंशन कोई बुरे नहीं है, इसलिए हमने जो प्रतिज्ञा भी कराई थी ठीक कराई थी कि गलत धन को अपने पास आने नहीं देना, ये नहीं कहा था कि जाने नहीं देना। कई जगह मानता हूं ऐसी मजबूरी होती है, हाँ तो वहां क्या करेगा व्यक्ति, लेकिन वो उसके इंटेंशन खराब है। आप उसे प्यार से समझा भी रहे हैं कि नोइंगली नहीं इस कारण हुआ, लेकिन फिर भी फिर आप उसमें, आपके पास टाइम शॉर्टेज है और समय सबसे बड़ा धन है। 3 दिन जाना तो कितना वो वेस्ट होता है, कितना आपके सारी अपॉइंटमेंट सब, फिर उसमें व्यक्ति उसमें ये नहीं समझ, वो एक मजबूरी है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो एक मजबूरी होगी, आपके इंटेंशन ऐसे नहीं थे। हाँ गलत धन मेरे बच्चों के और मेरे, वो मेरे पास ना आए जिससे संस्कार बच्चों के खराब हों, हमारे हों, इसलिए उसमें पाप नहीं है। एक नेचर ना हो भाई पैसा दे के पट काम नहीं, वो पाप है कि पैसा दूंगा तब काम होगा फटाफट ना। हमने देखा हमारे यहां अभी MRI मशीन आई है नीचे, MRI मशीन जो है वो जयपुर में रोक ली, उनको इच्छा थी करोड़ों की मशीन है जिस सीमेन कंपनी वो कुछ देगी, अरे 15 दिन 20 दिन से रोके हुए थे, और दिक्कत उसका डेली का 1,00,000 रुपए पड़ा, लैंड कर गई जर्मन से आके दिल्ली। फिर मुझे कहा डॉक्टर प्रताप जी ने, मैं गया जयपुर में, मैंने किस सीनियर IAS से फोन कराया, फिर उससे वो कराया, फिर खुद मिले, फिर हमने कहा और भी हमारे पास थे लिंक, उन्हें समझ आ गया ब्रह्मा कुमारी छोड़ेंगे नहीं, फिर आखिर उन्होंने कर दिया। ये एक रॉन्ग कर्म है कि पैसे के पीछे किसी को वो करना, पर वैसे इंसान को अगर कहीं मजबूरी होती है तो एक अलग चीज। ओके
और
जी कैसे, मैं समझ नहीं पाया क्या प्रश्न है आपका। हाँ सुरक्षा में भाई कहीं गलत करेगा जी, हाँ वो एक ड्यूटी हो गई, आपका नेचर ऑफ जॉब हो गया, उसमें भी इंटेंशन आपके बुरे नहीं है, तो बस इंटेंशन को भगवान देखता है। अब एक बार शिमला में सारे हिमाचल के ऑडिटर इकट्ठे हुए थे, उनके बीच में लेक्चर था, और हम बता रहे थे ऑलवेज सी द स्पेशलिटी ऑफ ईच वन, ऑलवेज सी द स्पेशल, कहते जी हमारा तो काम ही है नुक्स निकालना, हर जगह जाके कहां गलती है कहां, और क्या करें सर। मैं कहा ठीक है ये तो जॉब है, लेकिन ऐसा ना करो कि घर में भी यही काम करो, हर एक के नुक्स निकालो। कहते क्या करें हमारी नेचर हो गई है, घर में भी हम यही काम करते हैं, हर एक की कोई ना कोई त्रुटि निकालेंगे कि यहां देखो ये तुम्हारा फॉल्ट है। तो वो कहते हैं ऑडिटर साहब आप ऑफिस में ऑडिटर हो, घर में नहीं हो, घर में पिताजी हो। वो थोड़ा ध्यान रखना है, हम अपनी नेचर ना ऐसी बना ले। जहां जॉब है वहां तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। राजयोग इज द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका ही वो है, उससे एटीट्यूड अच्छे हो जाते हैं। जॉब एक थानेदार हो आप, वहां आप डंडा मार रहे हैं कुछ कर रहे हैं, पर घर में भी थानेदारी करने लग जाओ वो तो ठीक नहीं है ना। मित्रों के सामने भी करो वो तो ठीक नहीं है। ओके,
उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपका सेफ्टी डिपार्टमेंट है आप उसका प्रोसेस बना दीजिए। वो प्रोसेस जो भी पेपर्स हैं किस डेट में जाके ये वायोलेशन होगा, उससे पहले SMS सो मेनी सिस्टम्स हैं वो आप फॉलो करेंगे, अवेयरनेस होगा, सब कुछ होगा। तो सेफ्टी अब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें नेगेटिविटी की जरूरत है। इसका बहुत बड़ा पक्ष ये है कि अगर एक एक्सीडेंट होता है तो 1 करोड़ रुपए का GDP लॉस है, और जो उनकी फैमिली है उनको सेफ्टी में लेके आइए। मैं कई यूनिट्स का हेड रह चुका हूं, गुजरात में मैं गेल का हेड था, तो मैंने फैमिलीज को बुलाया और जो एक्सीडेंट होता है वो फैमिली मेंबर्स को दिखाया, इवन जो हमारे चैनल पार्टनर थे, कि ये अगर ऐसा गलत होगा तो ऐसा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है कि मेरा टाउनशिप सड़क के दोनों तरफ थी, तो एक तरफ से रॉन्ग साइड चलने में उनको कुछ 50-200 मीटर कम चलना पड़ता था, पूरी की पूरी यूनिट ऐसी चलती थी। फिर हमने वहां पे मना किया, नहीं माने, फिर उसके बाद फैमिलीज को बुलाया कि ये जो हमारी कंपनी की बस जाती है जिसमें आपके बच्चे जाते हैं, ये आपके हस्बैंड लोगों से ये ड्राइवर सीखेगा, और कहीं भी सूरत में जाके अगर एक्सीडेंट करेगा तो आपके बच्चों के साथ क्या होगा। वो दिन था और आज का दिन है, सब वो रूट फॉलो करने लगे। एक हमको डिवाइस करनी पड़ती है चीजें कि लोगों के माइंड में पड़े हम आपकी बेहतरी के लिए हैं। तो हमेशा एक सोल्यूशन रहता है उसको सॉल्व करने का। थैंक यू।
मतलब जो आपके पॉजिटिव इंटेंशन है ना उनको कन्वे करना है, फिर वो ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूं बच्चों को भी ना प्यार और एप्रिसिएशन चाहिए उनको भी, लेकिन अधिकतर पेरेंट्स डांट डपट अधिक करते हैं और प्रेम और वो चीजें बहुत कम करते हैं। अब एक बार कोई पेरेंट्स मेरे को लेके गए जी हमारे इस बच्चे को शिक्षा दो, ये बहुत शरारती है, बहुत वो है, पूछो नहीं, नाक में दम कर देता है। फिर मैंने उसको अलग से बुलाया, मैं कह तुम शरारत करते हो बहुत। कहते हाँ करता हूं। मैं कह क्यों करते हो? कहते इन पेरेंट्स के कारण। मैं क्यों? कहते जो भी गेस्ट आएंगे ना मेरा ये इंट्रोडक्शन देंगे, ये बहुत शरारती है, बहुत ऐसा है, बहुत ऐसा है। ठीक है, जब मेरे को टेररिस्ट डिक्लेयर कर ही दिया तो मैं और अधिक करता हूं। आप बताइए, बच्चों को सुधारने का तरीका जो बेस्ट है ना, आप उन्हें प्यार से लवली फैंटास्टिक वेरी गुड बहुत अच्छा डांट डपट कब करें। शिक्षा भी देनी हो ना, पहले 2-3 शिक्षा, बेटे तेरे में ये बात तो बहुत अच्छी, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी, दिल से ये भी बहुत अच्छा, ये भी, पर थोड़ा सा अगर इसमें इंप्रूव करेगा, वो भी ये नहीं कि पर ये तेरा नुक्स है, ऐसे नहीं कहना, नुक्स तो कहना ही नहीं, थोड़ा सा इस चीज में बेटे कभी इंप्रूव, पर रोज नहीं, वो भी कभी कभी, शिक्षा कभी कभी, एप्रिसिएशन डेली करो। और पता नहीं क्या क्या कहीं मैं, तू तो है ही निकट्टू, तू तो है ही निकट्टू, वो बन ही जाते हैं। अच्छे शब्द बोलो उनके लिए, वरदानी शब्द बोलो, फिर वो वैसे ही बन जाएंगे, अच्छे बने। और सुधारने का तरीका, अगर आपके नियरेस्ट कहीं सेंटर हो ना, उन्हें अच्छी कंपनी में ले जाओ, वहां आप देखो उनके संस्कार कैसे बदलते हैं। माउंट आबू में हर वर्ष बच्चों का प्रोग्राम होता है, उसमें लाओ, उसमें 10,000 बच्चे नीचे आते हैं और गवर्नर CM आदि देखने आते हैं। सुबह 4 बजे मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ बिल्कुल, कोई DPI ऊपर डंडा लेके नहीं घूमता, बिल्कुल डिसिप्लिन। तो ये है। ओके, थैंक यू। आई थिंक वी शुड कम, थोड़ा सा ये लास्ट ही हम रखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नहीं पूरा खत्म करेंगे। मेरा ख्याल समय की सीमा हो चुकी है और 6:30 आपको चाय भी पीना है, 6:30 फिर सेशन में भी पहुंचना है।
अभी हम बहनों को आमंत्रण करेंगे, हमारे बीच में जो हमारे चेयर पर्सन बैठे हैं उन्हें सम्मान करने के लिए सौगात देकर, ईश्वरीय परिवार की तरफ से आपको सौगात देकर उन्हें सम्मान किया जाएगा। तो यहीं पर क्वेश्चन आंसर हम लोग समाप्त करते हैं। आगे
आप
का
मेरे से पूछ लेना, मेरे पास है।
आगे का आपका सेशन 6:30 से रहेगा और फिर कल्चरल प्रोग्राम भी है, तो भाई साहब को, हमारे आदरणीय भरतभूषण भाई जी, परमात्मा के दिव्य ये पिक्चर देकर आपको सम्मान कर रहे हैं। आगे आपका जिनका जो भी क्वेश्चंस है आप पर्सनली हमारे आदरणीय भरतभूषण भाई साहब से इस सेशन के बाद में आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो उस पिता परम पिता परमात्मा को हार्दिक धन्यवाद है कि जिन्होंने इतने अच्छे टॉपिक्स को सिलेक्ट करा और उस सिलेक्शंस के द्वारा यहाँ हम सभी जो बैठ करके मनन चिंतन के द्वारा जो भी हमारे व्यूज निकले हैं और हम सब ने जो भी सीखे एक दूसरे से, अवश्य आज अभी इस मेडिटेशन के दौरान हम सभी संकल्प करेंगे कि इस जो भी अच्छे व्यूज हमें मिले और उसे हम अवश्य कार्यान्वित करें। तो अभी अंत में 3 मिनट पिता परमात्मा की याद से कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, अपने स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखें। हमने सुना इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग ध्यान है हमारा मुख्य सब्जेक्ट, तो आइए कुछ क्षणों के लिए अन्य सभी बातों से अपने मन का ध्यान हटाकर अपने मन को उस हायर एनर्जी के साथ कंसंट्रेट करेंगे, उसके लिए सर्वप्रथम महसूस करेंगे अपने आप को, मैं कौन हूं। जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस सबटल एंड वेरी डीप क्वेश्चन, हु एम आई, कौन हूं मैं। अंदर से एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं इन दोनों आंखों के द्वारा देखने वाली, मैं इन दोनों कानों के द्वारा सुनने वाला, मैं इन दोनों पैरों के द्वारा और इन हाथों के द्वारा कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाली चेतन शक्ति एनर्जी हो, आत्मा हो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। फील इट। शांति के इस प्रकंपन को अपने मन के अंदर स्थान दे। और महसूस करते जा रहे हैं, मेरा मन सभी नकारात्मक विचारों से शांत होता जा रहा है। विजुलाइज करें, देखे अपने आप को दोनों आंखों के बीच, मस्तिष्क के अंदर एक छोटा चमकता हुआ सितारा, अ वेरी टिनी पॉइंट ऑफ लाइट, स्पार्कलिंग, रिफ्लेक्टिंग इन द मिड ऑफ द फोरहेड। आप यही बैठे हुए अनुभव करें, मुझ आत्मा के पिता जो हायर एनर्जी है, सोर्स ऑफ पावर, कॉस्मिक एनर्जी, उस कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा जो पूरे विश्व के पिता है, वर्ल्ड फादर, उस परम पिता परमात्मा से मुझ आत्मा के अंदर सारी डिवाइन क्वालिटीज मैं आत्मा अब्सॉर्ब कर रही हूं। जैसे मेरा पिता शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है, मैं आत्मा भी उस पिता की संतान, मास्टर शांति का सागर हूं। इसी एहसास के साथ हम अपने अगले सत्र को 6:30 से फिर से ज्वाइन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।